हमारे डॉक्टर प्रताप मिड्डा जी उपस्थित हैं और डॉक्टर प्रताप मिड्डा जो हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में है उसके मेडिकल अधीक्षक हैं और साथ साथ जो ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रस्ट है उसके ट्रस्टी भी हैं और इस प्रोजेक्ट को आगे लाने में इसकी सेवा शुरू से जब से शुरू हुई तब से इसमें बहुत ही मतलब हर तरह से गाइडेंस देने में पालना देने में उनका सहयोग सदा रहा है। और ये जो आज का टॉपिक है वैल्यूज फॉर ए हेल्दी हार्ट, इस टॉपिक के जो भी बातें हैं ट्रूथफुलनेस टॉलरेंस पेशेंस उसकी प्रैक्टिकल मूर्ति हैं, तो ये जो टॉपिक है इसलिए इनसे आप सुनेंगे हम कि कैसे हमें अपने हार्ट को हेल्दी बनाना है और इनका अनुभव इनको बहुत अच्छा जैसे प्रैक्टिकल कितना अनुभवी मूर्त जो आत्मा होती है वो अपने अनुभव से आपको सिखा सकते हैं। तो आज आप इनसे सुनेंगे वैल्यूज फॉर ए हेल्दी हार्ट। ओम शांति
ओम शांति। आई मस्ट थैंक द ब्रदर्स हियर, यू नो द इंट्रोडक्टरी सॉन्ग विच वी हैड इन द मेडिटेशन, दिल से कहें बाबा हर पल जीवन हमारा आपने बना दिया। And the first and the foremost thing which I think is that we need to understand. Okay. अच्छा ठीक है। सबसे पहली बात तो हमें ये समझने की है जब हम कहते हैं हार्ट को हम हील करें हेल्दी बनाएं स्वस्थ बनाएं तो ये समझना कि हीलिंग है क्या। नॉर्मली तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आजकल तो सिम्टम रिलीफ ही होता है, आपको पेन है तो पेन किलर दे देंगे, फीवर है तो फीवर को कम करने की दवाई दे देंगे, खांसी है तो कफ सप्रेसेंट दे देते हैं। अगर मान लीजिए किसी को अस्थमा हो रहा है और सांस की नली सिकुड़ जाती है, तो सांस की नली को हम डायलेट करने के लिए ब्रोंको डायलेटर्स दे देते हैं। पर यहां जो हम बात कर रहे हैं वो हीलिंग की बात कर रहे हैं, हार्ट को हेल्दी बनाने की बात कर रहे हैं। तो जो हीलिंग शब्द है वो एक वर्ब है, यानी एक क्रिया है, एक प्रोसेस है। और हीलिंग का अर्थ कुछ लोग उसको क्योर से भी सिमुलेट करते हैं, कुछ उसको रिपेयर से भी करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो शब्द है वो है रिस्टोरिंग द साउंडनेस, कि फिर से बराबर उसको बनाना, हार्ट को साउंड बनाना, या रिस्टोरिंग द होलनेस। तो यहां जिस प्रोग्राम में हम बैठे हैं यहां हीलिंग का अर्थ ही ये है कि हम हार्ट को फिर से ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आए जब फिर से वो होल हो सके, साउंड हो सके, बिल्कुल स्वस्थ हो सके। तो उसके लिए जरूरी है कि हमें कुछ ऐसे परिवर्तन करने होंगे अपने जीवन में, अपनी जीवन पद्धति में, अपने सोचने के तरीके में, अपनी चाल चलन में, तभी हम उसको रिस्टोर कर सकेंगे। दवा जो है वो फिजिकल सिम्टम्स को टेक केयर कर सकती है, फिजिकल सिम्टम्स को मैनेज कर सकती है, लेकिन जो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा वो परिवर्तन आता है आमूल दृष्टिकोण बदलने से। ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय में भी हम अपने चार सब्जेक्ट्स मानते हैं। पहला सब्जेक्ट जिसको हम ज्ञान कहते हैं वो अवेयरनेस है या अवेकनिंग है, कि हमें रियलाइजेशन होती है कि ये शरीर जो है ये मेरा वस्त्र है, ये शरीर मेरा रथ है और इस शरीर को चलाने वाली मैं चैतन्य आत्मा हूं। और हम ये भी समझते हैं कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा का स्वधर्म प्रेम, शांति, आनंद और प्रसन्नता है। और उसके साथ साथ ये भी समझते हैं कि जब हम आत्मिक नाते से, केवल ये बात तो हम जानते आए हैं, हमारे शास्त्रों में भी है, गीता में भी भगवान ने अर्जुन को समझाया, लेकिन आत्मिक भाव से कर्म में आना, हम अपने आप को आत्मा जानते हैं, जानने तक ही सीमित है, लेकिन उस भाव से जीवन में चलना, आत्मिक भाव से व्यवहार में आना, वो सबसे बड़ा अंतर पड़ जाता है। और दूसरी बात है जिसको हम साधना कहें, योग कहें, तपस्या कहें, पुराने ऋषि मुनि भी तपस्या क्यों करते थे? तपस्या इसलिए करते थे कि उनको कुछ शक्तियां मिले, कुछ सिद्धियां मिले। तो योग जो है हमारी एम्पावरमेंट है, हमें फिर से अपनी जो वो शक्तिशाली स्थिति को पाने की बात है। आज हम जो साधारण भाषा में ये कहते हैं कि हमारा मन स्थिर नहीं होता, या हम चाहते नहीं हैं लेकिन हो जाता है, तो उसका भाव क्या है कि हमारी आत्मा में वो शक्तियां नहीं रही हैं कि हम अपने आप को चला सकें। आप लोगों ने शायद आर्ट गैलरी में या म्यूजियम में कहीं चित्र देखा हो, हमारे म्यूजियम में एक चित्र है कि मनुष्य आत्मा जो है उसको दिखाया है मस्तक के बीच में, और उसके हाथ में फिर लगाम है और कर्मेंद्रियां हमारे घोड़े हैं। तो भाव ये कि जब सेंस ऑफ कंट्रोल लाइफ में आ जाती है, आज जो सबसे बड़ी दुविधा लोगों के मन में है, दे फील हेल्पलेस। जो लोग पावरफुल पोजीशंस में भी हैं, आप मानिए वो भी हेल्पलेस महसूस करते हैं। हम समझते हैं आईएएस ऑफिसर्स हैं या आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनके पास बहुत शक्तियां हैं। अभी जस्ट दो दिन पहले ही मैंने किसी अपने मित्र को कहा कुछ काम के लिए, तो कहता भाई अगर मेरे डिपार्टमेंट का काम होता तो मैं कर देता। मैंने बोल तो दिया है उनको, लेकिन मुझे लगता है कि आपको खुद जाना पड़ेगा वहां। और मेरे भाव का अर्थ, शब्द का भाव भी आप समझ गए होंगे। तो आज जो जीवन में हेल्पलेसनेस हो गई है, और जो जीवन में हम आशा ही खो बैठे हैं, निराशा हो गई है, ऑप्टिमिज्म नहीं है आज, क्योंकि कहीं भी हमें कुछ ऐसा नहीं नजर आता कि जो चीज हम सोचते हैं वो हो पाएगी, जो हम सोचते हैं जो हम करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता, कोई ना कोई कारण बन जाता है। कभी साधनों की कमी हो जाती है, तो कभी जो साधन जिनके पास हैं वो संकुचित दृष्टिकोण बना लेते हैं, हमें मिल नहीं पाते हैं। तो भाव ये है कि हम लोगों के जीवन में जो आशा आती है, जो विश्वास आता है, वो आता है जब सेंस ऑफ कंट्रोल होती है, जब जीवन में कुछ शक्तियां होती हैं, जीवन में कुछ हमें ऐसा लगता है कि जो कार्य हम करना चाहते हैं वो हम विश्वास से और आस्था से कर पाएंगे, वो निराशा। अमेरिका में भी जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि दिल की बीमारी के साथ जो दो मुख्य कारण उन्होंने लगाए हैं 50s में, जिनकी उम्र 50 साल होती है उनको दिल की बीमारी के साथ, एक तो है जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं है, जो कार्य कर रहे हैं उसमें संतोष नहीं है, और दूसरा जनरल अनहैप्पीनेस है, डिप्रेशन है। वो कहते हैं हार्ट डिजीज, लगभग 40% पेशेंट जो हार्ट डिजीज के, उनमें डिप्रेशन एसोसिएटेड हो जाती है। तो आशा चाहिए। तो वो जो दूसरा हमारा सब्जेक्ट है वो एम्पावरमेंट का, और जो तीसरा सब्जेक्ट है हमारा वो है वैल्यूज की इनकल्केशन की बात है, जीवन में कुछ वैल्यूज को धारण करने की बात है। हम एम्पावर भी कर लें अपने आप को, योगी भी बना लें, लेकिन अगर जीवन में धीरज नहीं है, जीवन में प्रेम नहीं है, जीवन में संतोष नहीं है, तो योग में भी हम विचलित हो जाएंगे। तो ये जो तीसरा सब्जेक्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम ज्ञान को व्यवहार में लाते हैं, जब हम ज्ञान को संबंधों में लाते हैं, तो लोग ये नहीं सोचते कि आप में ज्ञान कितना है, कितनी पुस्तकें आप पढ़ी हुई हैं, लेकिन आप उनको कितना प्रेम दे पाते हैं, आपसे मिलकर उनको कितनी शांति मिलती है, उस पे अंतर पड़ता है। आप किसी के मन में विश्वास जगा सके, किसी के जीवन का सहारा बन सके, वो बात आ जाती है, उससे वो सोचता है कि आपकी गहराई कितनी है। और फिर जो चौथा सब्जेक्ट है हमारा वो है सेवा का। सेवा भी कैसे करनी है, सेवा भी वो, अभी हम लोगों ने परमात्मा के महावाक्य सुने कुछ दिन पहले, तो उसमें कहा कि पुण्य कर्म क्या है। पुण्य कर्म की परिभाषा ये बताई कि वो कर्म जो निस्वार्थ भाव से किया गया और जो कर्म बेहद के दृष्टिकोण से किया गया। हम अपने परिवार के लिए या अपने मित्रों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन बेहद के दृष्टिकोण से आप देखें, जो भी महात्मा हुए हैं हमारे यहाँ, जो भी थिंकर्स फिलोसोफर्स हुए हैं, उन्होंने अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस रखी, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हुए या गुरु नानक हुए या महात्मा गांधी हुए, उनका जो दृष्टिकोण था वो बहुत विशाल था। उन्होंने दृष्टिकोण को सीमित नहीं रखा कि ये इस जाति, इस धर्म या इस परिवार या इस बिरादरी के लोगों के लिए मुझे कुछ करना है। तो जो भी कर्म हम निस्वार्थ भाव से और बेहद के दृष्टिकोण से करते हैं, वो कर्म हमारा पुण्य कर्म बनता है। अब हम देखें ये चारों ही सब्जेक्ट के लिए हमें क्या वैल्यूज की जरूरत है, क्या हमारे जीवन में गुण आए, वो सद्गुण आए, जिससे हम अपने हार्ट को बराबर से होलनेस में लेके आए, संपूर्ण बना सके। होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए हमारी। तो अवेकनिंग तो बहुत जरूरी है, जागृत तो होना है। आजकल हमारा जीवन क्या हो गया, मैकेनिकल हो गया है, जिसको हम कहें कंडीशनल हो गया है। हम कुछ होता है हम उसके प्रति रिएक्ट करते हैं, कुछ नहीं होता है तो हम शांत रहते हैं। यानी हमारा रिस्पांस भी जो है वो प्रेडिक्टेबल हो गया है। कुछ होगा, अब मान लीजिए किसी ने कुछ गलती कर दी तो हमारा रिस्पांस क्या होगा, हमारा रिस्पांस होगा उसको स्नब करने का, उसको डांटने का। अभी रिस्पांस को परिवर्तन करने की जरूरत है। तो वो जो दिव्य गुण चाहिए जीवन में, जो सबसे पहला गुण मैं समझता हूं जो जीवन में हमारा होना चाहिए, वो है प्रेम। लव हील्स, हम सब जानते हैं, हम ये भी कहते हैं कि भगवान प्रेम है, लव इज गॉड। तो सबसे बड़ा जो गुण चाहिए वो है प्रेम। लेकिन प्रेम कहां से आता है? जब हम प्रेम की बात करते हैं तो आज अभाव क्यों है प्रेम का जीवन में? क्योंकि हम लोग संकुचित दृष्टि को, हम सोचते हैं कोई हमें रिस्पेक्ट देगा तो हम उसको रिस्पेक्ट देंगे, कोई हमें प्रेम देगा तो हम उसको प्रेम देंगे, कोई हमारे ऊपर टेढ़ी नजर रखेगा तो हम उससे डबल उसको कष्ट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो प्रेम के लिए जैसे मैंने कहा कि हम सबसे बड़ी जरूरी बात यह है, यहां जो अवेकनिंग हमें मिली है कि हमारा स्वधर्म ही प्रेम है, हमारी ओरिजिनल नेचर ही है इट इज टू बी लविंग, इट इज आवर इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक। जो हमारा इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसको भूल गए हैं। दैट इज व्हाई यू सी एवरीवेयर देयर इज क्योस। अगर हम किसी से प्रेम से बात करते हैं तो सबसे पहले उसको क्या लगता है? वो व्यक्ति समझता है कि ये व्यक्ति मुझे सम्मान दे रहा है, ये मेरी जो जीवन है उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। क्योंकि लव केवल एक गुण नहीं है, लव के अंदर, प्रेम के अंदर बहुत सी बातें सीमित है। जब प्रेम होता है तो आपको अपनापन महसूस होता है, और जब अपनापन महसूस होता है तो आप कुछ भी त्याग कर सकते हैं, कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है। आज परिवार में भी क्या होता है, मां बाप और बच्चों के बीच में संबंध जो है वो क्यों दूरी के हो जाते हैं? संबंध है लेकिन सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है, प्रेम नहीं है। तो हार्ट दिल के लिए, और दिल तो ऐसा शब्द है जिसकी हम बात करते हैं तो पहले बात प्रेम की होती है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में है, चाहे वो पोइट्री में है, शायरी में है। वो कभी कभी कहते हुए आप नहीं समझेंगे, ये तो दिल की बात है। सो दिल का तो सीधा साधा जो है उसकी नरिशमेंट ही प्रेम है, उसकी खुराक ही प्रेम है। और यदि हमारे जीवन में प्रेम है तो हम कुछ भी किसी के लिए करने के लिए तैयार हो जाते हैं, त्याग कर सकते हैं। और फिर प्रेम से क्या होता है, प्रेम से स्थिरता रहती है जीवन में, आप में विश्वास रहता है। अभी देखिए, जहां प्रेम नहीं होगा तो आपके मन में संदेह उठेगा कि मैं इसके पास जाऊंगा तो ये मेरा काम करेगा या नहीं करेगा। जहां प्रेम होगा वहां आप अधिकार से जाकर कह सकते हैं, एंड यू हैव ए राइट, एंड व्हेन यू गो देयर यू एक्सपेक्ट इट विल बी डन। फिर आपके मन में शक नहीं होता है। तो जहां प्रेम है वहां विश्वास भी होता है, ट्रस्ट भी होता है। और प्रेम में तो देखिए, मां हमारे सामने, मां की कितनी बड़ी उदाहरण है। प्रेम के लिए हम कितनी बड़ी सफरिंग भी उठा लेते हैं, कोई बड़े से बड़ा कष्ट भी होता है वो भी हमें बड़ा नहीं लगता। बच्चे के लिए मां क्या नहीं करती है। तो इसलिए प्रेम जो है वो सबसे बड़ा, प्रेम हमारी नरिशमेंट है, हमारी खुराक है। एक स्टडी हुई थी, एक रिसर्च की थी, रिसर्च भी अनजाने में हो गई। दो तरह के माइसिस जो चूहे होते हैं बड़े, उनको कैंसर की डाइट दे रहे थे, कैंसर प्रोड्यूस करने की डाइट। तो एक ग्रुप को एक रिसर्च असिस्टेंट जो बहन थी वो मैनेज कर रही थी, दूसरे ग्रुप को दूसरा व्यक्ति मैनेज कर रहा था। तो वो बहन ने सिर्फ इतना किया कि जब वो उनको डाइट देती थी, उनको केयरेस भी करती थी, थोड़ा सहलाती भी थी प्रेम से, दोनों को एक ही प्रकार की डाइट मिल रही थी, कैंसर प्रोड्यूसिंग डाइट मिल रही थी, लेकिन देखा गया कि जिनको प्रेम मिल रहा था उनको कैंसर डेवलप ही नहीं हुआ, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एनवायरमेंट वही था, डाइट वही थी। तो प्रेम हमें सुरक्षा भी महसूस करवाता है। आज हम कहते हैं ना, दिल टूट गया। क्यों दिल टूट जाता है? शब्द ही होते हैं कि जहां से हम प्रेम या रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं वहां से हमें अपमान मिलता है, या वहां से हमें नफरत मिलती है, तो दिल टूट जाता है। तो इसलिए अपने आप से भी प्रेम करना बहुत जरूरी है। आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो सेल्फ गिल्ट की है। हम जाने अनजाने अपने आप को भी कोसते रहते हैं अंदर ही अंदर। अपने प्रति भी प्रेम होना चाहिए, और जब हम अपने प्रति, अपने आप को प्रेम करना सीख जाएंगे तो फिर हम दूसरों को भी प्रेम दे सकेंगे। तो अपने आप को प्रेम करने का अर्थ ये है कि हम अपनी विशेषताओं को जाने, अपनी वीकनेसेस को भी जाने, और वीकनेसेस को हम ये नहीं कि हम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वीकनेसेस को भी हम अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। वीकनेसेस को हम ये समझें कि इसमें मुझे मेहनत करने की जरूरत है, इसके लिए मुझे किसी के सहयोग लेने की जरूरत है जो बातें मेरे जीवन में नहीं है। तो इसलिए प्रेम हमारी फाउंडेशन है, और अगर जीवन में प्रेम है तो हम लोग ऐसा होता है तो फिर दे भी सकते हैं किसी को। अब कभी कभी हमारे से कोई भूल हो जाती, हम किसी को हर्ट कर देते हैं और फिर मन ही मन चलता रहता है कि हमने इस व्यक्ति को दुख पहुंचाया, इस व्यक्ति को हमारी वजह से परेशानी हुई, तो उसके लिए हम क्या करें? आप उसके पास जाएंगे, कभी हो सकता है आप उससे पोजीशन में बड़े हो, आप उससे आयु में बड़े हो, तो आपको हिम्मत नहीं होगी कि मैं इसको कैसे सॉरी कैसे कहूं, ये भी होता है। अब उसके लिए हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए, लेकिन हम अगर मान लीजिए शब्दों में नहीं कह सकते, एटलीस्ट सूक्ष्म में अपने विचारों के द्वारा उस आत्मा को शुभकामनाएं दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी दुविधा भी हो जाती है, हम कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, लेकिन वो फिर अंदर में गिल्ट रहती है। या फिर ये भी हो सकता है, हम उसके प्रति जाने अनजाने में, मैंने ऐसा अभ्यास किया है कि जो व्यक्ति हमारे से किसी प्रकार से किसी कारण से अनबन हो जाती है, तो हम क्या करते हैं उसकी महिमा उसकी विशेषताएं तीसरे व्यक्ति को की, जो भी उसको जानने वाले हैं या उसको ऐसा कार्य दिया जो उसकी पसंद का है, तो उससे क्या होता है, उस व्यक्ति को लगता है धीरे धीरे उसका भी दृष्टिकोण आपके प्रति बदल जाता है। तो इसलिए प्रेम जो है हार्ट के लिए, हार्ट को हेल्दी बनाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा गुण जो मैं समझता हूं वो है कंटेंटमेंट, संतोष जीवन में चाहिए। देखिए ऐसा है, ऐसे तो अगर हम आज के दुनिया को देखें तो कुछ भी पर्याप्त नहीं है, रेस लगी हुई है, लोग चाहे वो धन है चाहे साधन है चाहे शक्तियां हैं पोजीशन है पद है, उसके पीछे लोग भाग रहे हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि मनुष्य को अपने आप को मैनेज करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले ये चाहिए कि उसको ये देखना है कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, उसका एम्बिशन क्या है लाइफ में। अगर मुझे ये मालूम है कि मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, उसके लिए क्या जरूरी है, वो स्किल्स चाहिए मेरे में, वो साधन भी चाहिए, लेकिन उसके बाद अगर मैं अपने मन को भगाता रहूंगा तो कुछ नहीं होगा। कंटेंटमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति जिसके जीवन में संतोष नहीं है, उसके लिए कितना भी धन हो कितने भी साधन हो वो कभी पर्याप्त नहीं होंगे। और जब कोई व्यक्ति, आजकल की दुनिया में क्या होता है, फिर हम भागते हैं। जब बचपन में हम पढ़ते थे वो कहते थे इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। आजकल क्या होता है, वेल्थ कमाने के लिए हम सबकी सेक्रीफाइस कर देते हैं, हेल्थ भी अपनी खो देते हैं, कैरेक्टर भी खो देते हैं, काम कितना करते हैं। मैं आजकल के बच्चों को देखता हूं, ठीक है मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और इवन जो इंडियन कंपनीज हैं जैसे इंफोसिस है, ये लोग पैसा देते हैं पर काम कितना लेते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, और फिर जो आने जाने में कम्यूट करने में समय जाता है वो अलग, क्योंकि भागदौड़ की जिंदगी हो गई है। लिमिट तो कहीं हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो कुछ भी पर्याप्त नहीं है। आप देखिए पहले जमाने में किसी के पास 1,00,000 रुपया होता था तो कितनी बड़ी बात होती थी, आज तो क्या है करोड़ों होता है तो भी संतोष नहीं है। तो संतुष्टता जो है जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। ये जरूर है कि संतुष्टता के लिए हमें कुछ और गुण भी चाहिए, संतुष्टता के लिए जैसे हमें धीरज भी रखना पड़ता है, संतोषी व्यक्ति को जीवन में धीरज चाहिए, संतोषी व्यक्ति को यह भी चाहिए कि बुद्धिमता से काम लेगा, ज्ञान भी चाहिए। यहां जब हम लोग ये प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं तो मैं डॉक्टर गुप्ता से कहता हूं कि सबसे बड़ा परिवर्तन जो हम लोगों में देखते हैं जो भी इस कार्यक्रम में आते हैं, सबसे बड़ा परिवर्तन यही देखते हैं कि वो समझ जाते हैं कि कितना जरूरी है, कितना जीवन के लिए आवश्यक है। वो क्योंकि अनुभवी बन जाते हैं। जो व्यक्ति संतुष्ट होगा वो निर्भय भी होगा, क्योंकि उसको फिर किसी का भय नहीं रहेगा, क्योंकि वह संतुष्ट है, कंटेंटेड है, उसको कोई चीज टेम्प्ट नहीं कर सकती है। तो व्यक्ति वो निर्भय भी बन जाता है, और जो व्यक्ति संतुष्टता में रहता है वो उसके चेहरे से, आप उसके चेहरे से रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, स्थिरता आ जाती है, कंटेंटमेंट से जीवन में स्टेबिलिटी आती है। और जब हम असंतुष्ट होते हैं, जब जीवन में असंतोष है, तो आपकी निगाहें जो इधर उधर जाती रहेगी, आप में स्थिरता नहीं आएगी। तो आध्यात्मिक जीवन में तो हम कंटेंटमेंट को बहुत बड़ा गुण मानते हैं। कंटेंटमेंट जो है हमारे लिए एक फर्स्ट स्टेप है कि आध्यात्मिकता में हम ये समझते हैं कि जो कुछ है, हम लोग आप साधारण भाषा में, वो परमात्मा का दिया हुआ है और उसके कार्य में लगाना है मुझे, सोच समझ कर लगाना है। तो सबसे पहले जब हम ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में, परिवर्तन जो आता है व्यर्थ समाप्त हो जाता है। वही धन जो थोड़ा होता है वो इतना ज्यादा हो जाता है। जब आपकी वेस्टेज समाप्त हो जाए, मान लीजिए आप एक बकेट में पानी भर रहे हैं और नीचे से लीकेज हो रही है, तो कितना भी पानी जाएगा तो वो बह जाएगा। ऐसा ही होता है बाहर की दुनिया में, जब आपके पास बहुत कुछ भी होता है तो वेस्टेज होती है। हम व्यर्थ में भी स्पेंड करते हैं, हम स्पेंड करते हुए सोचते भी नहीं है। तो यहां जब हम परमात्मा की अमानत समझते हैं, कोई भी साधन, चाहे हमारा समय है, चाहे धन है, चाहे हमारी शक्तियां हैं, उसको हम परमात्मा की अमानत समझकर कार्य में लाते हैं, तो उससे वेस्टेज समाप्त हो जाती है। और जब वेस्टेज समाप्त हो जाती है, वो थोड़ी चीज भी विशाल बन जाती है, उसको हम दूसरों से शेयर कर सकते हैं। चौथा जो गुण मैं समझता हूं वो है जेनरोसिटी का, विशाल हृदय, दूसरों की मदद करना। जो व्यक्ति विशाल, जिसकी अनलिमिटेड अवेयरनेस होगी, वो दूसरों को सहयोग दे पाएगा, जेनरस होगा। हम कहते हैं ना, इसका दिल बहुत बड़ा है। क्यों दिल बहुत बड़ा है? क्योंकि इसको देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। अगर हमारे पास कुछ भी है वो हम शेयर करते हैं, तो दिल बड़े का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी है, कुछ लिमिटेशंस नहीं है। तो दिल बड़ा होना यानी हम दूसरों की मदद कर पाए, विशाल हृदय बने, जेनरोसिटी। अब आजकल लोग जो दान करते हैं वो किस लिए दान करते हैं? कि उनका नाम हो, उनकी महिमा हो, वो फिर वो जेनरोसिटी नहीं है। साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने एक वर्ड निकाला है जिसका नाम है हेल्पर्स आई, यानी जो लोग निस्वार्थ भाव से, अंग्रेजी में शब्द यूज करते हैं एल्ट्रोइस्टिक वे। साइकोलॉजिस्ट ने ये स्टडी किया कि जिन लोगों में देने की भावना है उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, जिसको हम अपना डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कहते हैं, जो बीमारी से लड़ने की ताकत है वो बहुत बढ़िया हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। खास तौर पे ये जो छोटी मोटी हमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होती हैं, ओल्ड एज में प्रॉब्लम्स होती हैं, वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, जो लोग दूसरों की मदद करते रहते हैं वो सदा स्वस्थ रहते हैं, उनको दुआएं मिलती हैं। हम ये तो जानते हैं कि दुआओं की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जो आपको दुआएं मिलती हैं वो क्यों मिलती हैं? दुआएं इसलिए मिलती हैं बिकॉज यू डिजर्व दोज ब्लेसिंग्स। उसके लिए आप, दुआओं के लिए कोई स्पेसिफिक पुरुषार्थ नहीं होता, वो हमारी जैसे नेचर है, जो हमारा स्वभाव होता है, उस स्वभाव के कारण दुआएं मिलती हैं। आप दुआओं को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन दुआएं आप पर आ जाती हैं, ब्लेसिंग्स कम अपॉन यू। तो विशाल हृदय और दूसरों की जेनरोसिटी जो है वो बहुत जरूरी है दिल के लिए। फिर उसके बाद हम जो दूसरा गुण कहते हैं वो कहते हैं करेज, साहस। साधारण भाषा में भी कहते हैं कि ये दिल वाला आदमी है, ये दिलदार है, इसमें कुछ करेज है, हिम्मत है। ये जो भी बातें हैं ये सब हमारी माइथोलॉजी में, हमारे लिटरेचर में सब चीजें हैं। और भय कब लगता है हमें? जब हम सीमित दायरे में हो जाते हैं, जब हम इनसिक्योर महसूस करते हैं, असुरक्षा महसूस करते हैं। साहस तब होता है जब हमें किसी से कोई इनसिक्योरिटी की फीलिंग नहीं होती। तो करेज बहुत बड़ी चीज है। किसी ने पूछा, बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि आपकी एज कितनी है। उसने कहा एज का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप मेरे से पूछोगे मेरे में करेज कितना है, वो बहुत है, दम बहुत है मेरे में। सो जितना हमारे में करेज होता है उससे हमारी आयु भी बढ़ती है। भय जो है, जो उर्दू में शब्द है बीमारी, अगर आप उसका विच्छेद करें, बीम होता है भय और आरी होता है बने रहना। यानी जो इल हेल्थ है उसका मेन कारण ही है कि भय बना हुआ है जीवन में। और जहां साहस होगा वहां फियरलेसनेस आ जाती है। अभी यहां ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में जब हम ये समझ लेते हैं कि आत्मा अविनाशी है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम केवल एक्टर्स हैं, और एक्टर होने के नाते हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं और रोल्स चेंज होते रहते हैं। शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है, तो भय कहां रहेगा फिर? शरीर तो मालूम ही है ना कि दिस इज इम्पेरिशेबल है और आत्मा इम्पेरिशेबल है, और हम हैं तो आत्मा। शरीर तो हमें वस्त्र मिला रोल प्ले करने के लिए। हां ये जरूर है, जो साधन हमें प्राप्त हुए उनकी संभाल करनी है, उनको मैनेज इफेक्टिवली करना है, उनको मैनेज ऐसे करना है कि वो लंबे समय तक हमारे साथ रहे। अभी जैसे आपने डॉक्टर गुप्ता से सुना भी होगा कि अगर हमें हार्ट डिजीज प्रिवेंट करनी है तो हमें कहां से स्टार्ट करना होगा? स्कूल्स में स्टार्ट करना होगा, बचपन से स्टार्ट करना होगा। क्योंकि जो चेंजेस आ जाते हैं वो चेंजेस तो बचपन से शुरू हो जाते हैं। जो हमारी साइकोलॉजी है वो ऐसी बन जाती है कि उसको हम चेंज करने में अपने आप को विवश महसूस करते हैं। मुझे याद है जब मैं चंडीगढ़ में था तो मेरे पड़ोस में उनके चाचा जी थे, मिलते थे वो। एक दिन मैं कैजुअल्टी में ड्यूटी पे था तो उनको हार्ट में पेन हुआ, लेके आए उनको। तो मैंने बाद में ऐसे कहा, अंकल अब आपको स्मोकिंग छोड़नी चाहिए क्योंकि पहले तो आप स्मोक करते। कहा देखो बेटा, सारी उम्र सिगरेट पी है, क्या फर्क पड़ता है, अभी जाना है तो चले जाएंगे। लेकिन जब वो भय हुआ तो अपने आप सब कुछ छूट गया। तो इसलिए आदतों को चेंज करने के लिए क्या ड्राइव करता है हमें? कभी कभी भय होता है और कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि अंदर से जो परिवर्तन आता है उससे हम चेंज कर सकते हैं। तो हार्ट डिजीज भी ऐसी है, वो उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें जो एटीट्यूड है, उसमें जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो हमारी धारणाएं हैं, उनको परिवर्तन करने की जरूरत है। उनको जब हम परिवर्तन कर लेते हैं तो जो स्थूल परिवर्तन जो होता है वो सूक्ष्म परिवर्तन की फाउंडेशन है। अभी तक हम ये समझते आए थे, लोग कहते भी हैं कि साउंड माइंड ने साउंड बॉडी, लेकिन अभी जो साइकोलॉजिस्ट ये रियलाइज करते हैं कि अगर आपका मन स्वस्थ है, अगर आपका मन शक्तिशाली है, तो शरीर में अगर कोई दुविधा भी है, रोग भी है, तो भी आप शरीर को मैनेज कर पाएंगे। मेरे एक मित्र थे चंडीगढ़ में, उनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया था यंग एज में। उनकी नेक भी स्टिफ थी, उनकी लेग्स भी स्टिफ थी, मोबाइल थे तो केवल हाथ थे, स्ट्रेचर पे जाते थे। स्लम्स में चंडीगढ़ में वो स्कूल्स रन करते थे, पोएट्री लिखते थे, आर्टिकल्स लिखते थे न्यूज़पेपर के लिए, पोएट्री की बुक्स भी लिखी। और बच्चों के लिए एक वोकेशनल कोर्सेज भी रन करते थे। उन्होंने ये मन से इनहिबिशन ही निकाल दी थी कि मैं स्ट्रेचर पे हूं। वो उससे जितना हम लोग काम करते थे शायद उससे ज्यादा वो काम कर रहे थे। तो मन हमारा जब शक्तिशाली हो जाता है और मन को हम समझते हैं कि वो आत्मा की एक फैकल्टी है, ये रियलाइज करते हैं, और जब हम आत्मिक भाव में आ जाते हैं और आत्मिक भाव के नाते, सोल कॉन्शियस के नाते, जब हमारा परमात्मा से संबंध जुटता है, तो हम ये तो समझते हैं कि परमात्मा सर्व गुणों के से संपन्न है, सर्व गुणों के भंडार हैं। तो सर्व गुण हमें बिना मेहनत के प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन हमारा संबंध इतना गहरा होना चाहिए, वो संबंध भी दिल से होना चाहिए। जब दिल से संबंध होता है, दिल हम किसने कहते हैं, डेप्थ, गहराई से, सुपरफिशियल नहीं। हम भक्ति मार्ग में जो हमारा परमात्मा से संबंध है वो बहुत सुपरफिशियल है, वो रिचुअल्स में है। हम जाते हैं, हम ये भी समझते हैं कि परमात्मा हमारे माता पिता हैं, बंधु हैं, सखा है, आरती भी गायन करते हैं, लेकिन बहुत सुपरफिशियल संबंध होता है। आप देखिए, जब आपको कोई कठिनाई होगी तो सबसे पहले आपको कौन याद आएगा, अपने माँ बाप याद आएंगे, या अपना कोई मित्र याद आएगा, या कोई ऐसा मित्र याद आएगा जो हाई पोजीशन में है, जिसको हम कहते हैं जिससे हमारे सर्व संबंध है, वो मुश्किल में तब याद आता है जब सब लोग फेल हो जाते हैं, तब हम भगवान के पास जाते हैं। तो जिसके साथ गहरा संबंध होता है वो सबसे पहले याद आना चाहिए। तो वो संबंध जब गहरा हो जाता है परमात्मा से, तो इन गुणों को भी लाने में हमें जीवन में कुछ मुश्किल नहीं होती। अब दिल को आघात किस चीज से पहुंचता है, दिल को झटका लगता है, शॉक लगता है, वो तब लगता है, जैसे मैंने कहा, कि जब जीवन में संतोष नहीं है, जीवन में शक्ति नहीं है, तो टॉलरेंस नहीं होती है। टॉलरेंस भी, सहनशीलता भी बहुत बड़ा गुण है, धीरज भी बहुत बड़ा गुण है, जिससे लाइफ में परिवर्तन आता है। सहनशीलता तो इट इज लाइक ए रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में कोई चीज रहती है तो उसको खराब नहीं होती है। ऐसे जो व्यक्ति सहनशील है, टॉलरेंट है, उसका माइंड कूल रहेगा हमेशा, और माइंड कूल रहेगा तो हार्ट भी स्टेबल रहेगा। सडनली क्या होता है, कुछ होता है, कोई कुछ बोल देता है, हम सोचने लग जाते हैं, तो कभी सिंकिंग की सेंसेशन आ जाती है, हम बैठ जाते हैं, मेरे से तो अब कुछ नहीं होगा, मैं तो अब कुछ नहीं करूंगा। या फिर कभी कभी ये भी होता है, एजिटेशन होती है तो हार्ट रेट फास्ट भी हो जाता है, फिर लगता है कि हम कुछ कर डालें। तो अभी हम इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं। आप देखिए, जो चीजें वेस्ट में होती थी हम टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, हम अपने आप को कंटेन नहीं कर पाते हैं। हमारे यहां इट वॉज अनहर्ड, अभी हमने जो गुड़गांव में दिल्ली के पास सुना कि बच्चों ने ही आपस में एक दूसरे को शूट कर दिया। विदेश में तो हम सुनते थे, अमेरिका में तो इट वॉज ए कॉमन थिंग, क्योंकि हम टॉलरेंट नहीं रहे, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अपना क्रिटिसिज्म नहीं एक्सेप्ट कर सकते। सरकास्टिक किसी ने रिमार्क किया, ये नहीं मैं कहता कि सरकास्टिक रिमार्क करना चाहिए या, लेकिन पर ये सोचिए, सब चीजें तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वी कैनॉट कंट्रोल द होल वर्ल्ड, वी कैनॉट कंट्रोल द होल सिटी। कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा जिसको हमारी कुछ बात पसंद नहीं आएगी, बट उसको भी तो एक्सेप्ट करना पड़ता है। ए पर्सन हु इज ओपन टू क्रिटिसिज्म, ही इज मोर स्टेबल, क्योंकि वो एक्सेप्ट करता है। और हमें ये भी पता है, वी आर नॉट परफेक्ट, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है इस वर्ल्ड में, दिस वर्ल्ड इज इम्परफेक्ट। कोई ना कोई, किसी में 100 स्पेशलिटीज होंगी लेकिन एक वीकनेस होगी। तो इसलिए हमें टॉलरेंस बहुत चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, कि कोई भी कुछ कहता है तो उसकी बात को हम स्वीकार कर सकें। ब्रह्मा बाबा हमें ये कहते थे कि निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। क्योंकि क्या होता है, हम कभी कभी इल्यूजिव वर्ल्ड में रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता हम कहां हैं। इफ वी हैव फ्रेंड्स, इफ वी हैव पीपल हु कीप अस अलर्ट, हम अपने आप को बहुत बड़ा मानने लग जाएं कि मैं महात्मा बन गया हूं या साधु बन गया हूं, मेरी कोई कमी मुझे बताएगा तो मुझे लगेगा ये व्यक्ति तो मेरा दुश्मन है, लेकिन बाबा ये कहते हैं ये व्यक्ति आपका मित्र है, क्योंकि ये आपको रियलाइज करवाता है कि आपको अभी आगे बढ़ने की जरूरत है। अब मूर्ति जो बनती है, देवताओं की जो मूर्ति, उसको कितना चिजल करना पड़ता है, उसको कितनी हार्ड हैमर और चिजल से कितना उसको करना पड़ता है। जो स्वरूप निखरता है वो तभी निखरता है जब वो एक्सेप्ट करती है। इसलिए क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, वी हैव टू एक्सेप्ट दीज आर द पीपल हु आर आवर फ्रेंड्स बिकॉज दे कीप अस अलर्ट, दे डोंट वॉन्ट यू टू बिकम लेजी, दे डोंट वॉन्ट यू टू बिकम केयरलेस। आज अगर सपोज मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आता हूं मेडिटेशन